समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
जी हाँ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मंगलवार की ताजगी भरी सुबह में समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे के साथ अपने प्रिय श्रोताओं का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और सुभद्रा रामचंद्रन। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
Namaskar, hello Ravi, a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani networks. Happy Tuesday to all, and as always Ravi, we are ready with a brand new edition of Aaj Savere. So let us start with some news headlines right away.
Ji bilkul Subhadra, badhte hain mukhya samacharon ki aur. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनाना स्किस्क में G7 शिखर बैठक में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री लगातार छठवीं बार भाग ले रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के निमंत्रण पर कनाडा की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी शिखर बैठक से अलग कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI ऊर्जा तथा क्वांटम से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं सुभद्रा।
The Financial Action Task Force, FATF, has condemned the Pahalgam terror attack, saying the attack could not have occurred without financial backing. The Global Watchdog said in a statement that the Pahalgam attack and other recent attacks could not have happened without money and means to move funds between terrorist supporters. The FATF reaffirmed its support to over 200 jurisdictions within its global network to build and enhance their counter-financing of terrorism measures. It will soon release a comprehensive analysis of terrorist financing, compiling cases provided by the global network.
सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे और इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि देश में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और ये प्रशिक्षण स्कूल कुशल ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में सहायक होंगे।
अभी ट्रक ड्राइवर के लिए ये भी 18-18, 16-16 घंटे चलाते हैं। विदेशों में ऐसी सिस्टम है कि वो कार्ड डालता है और 8 घंटे हुए कि उसको उतरना ही पड़ता है, गाड़ी चालू नहीं होती। अब वो ला रहे हम लोग, इसके बाद ट्रक और बसेस में कार्ड सिस्टम होगी, 8 घंटे हो गए तो गाड़ी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है, देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, तो हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर खोल रहे हैं, विशेष रूप से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, ताकि वहां के युवा ड्राइविंग सीखे और उनको रोजगार मिले।
श्री गडकरी ने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया।
Gujarat Health Minister Hrushikesh Patel has announced that 125 victims of Ahmedabad plane crash have been identified via DNA test till last night. Of these, 83 mortal remains have already been handed over to the families of the victims. In a social media post, the minister said that the remaining mortal remains will be released shortly after due process and necessary identification protocols are completed. The state government, in collaboration with central agencies, has been expediting the forensic and legal formalities to ensure timely closure for the grieving families. The government has debunked a message being circulated on social media channels claiming that the preliminary investigation report of the AI 171 crash has been published by the Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB. The fact-check unit of the Press Information Bureau, in a social media post, informed that the message related to this report is fake, as the report has not been published by AAIB. It urged people to always rely on official sources for accurate information. The Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB, Iran's national broadcaster, came under direct attack in what Israeli military officials describe as retaliation for strikes on Israeli infrastructure. The attack on IRIB represents a significant escalation in the targeting of civilian infrastructure by both sides. More details from our West Asia correspondent.
Iranian missiles struck Israel's Tel Aviv and the port city of Haifa on Monday, destroying homes and killing civilians as the conflict between the two nations entered its fourth consecutive day. Israel responded by striking buildings belonging to Iranian state-owned media companies in Tehran, including the IRIB television facility, during a live broadcast. The escalating confrontation has prompted urgent diplomatic efforts from the Gulf states and raised concerns among world leaders meeting at the G7 summit about the potential for a broader regional conflict. Tehran has reached out to Qatar, Saudi Arabia and Oman, asking these Gulf intermediaries to press United States President Donald Trump to use his influence on Israel to agree to an immediate ceasefire in exchange for an Iranian flexibility in nuclear negotiations. Gulf leaders and their top diplomats are working intensively, maintaining contact and constant communication with Tehran, Washington and other capitals in an effort to prevent the widening of what has become the most serious direct confrontation between the long-standing enemies in the West Asia. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
Despite the scale of destruction and mounting casualties, there are no immediate signs of de-escalation from either side.
लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की महिला टीम आज और कल अर्जेंटीना की महिला टीम के साथ खेलेगी। कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारत अब अर्जेंटीना के साथ शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल करना चाहेगा। भारत इस समय 9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है और अर्जेंटीना के साथ कड़े मुकाबले की उम्मीद है। अर्जेंटीना अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।
Yoga is rapidly gaining popularity in Croatia and becoming a part of people's daily life, where Prime Minister Narendra Modi is visiting tomorrow to strengthen bilateral relations. Mr. Modi, the third and last leg of his three-nation tour, will arrive in the capital Zagreb tomorrow afternoon, which will be the first ever visit of an Indian Prime Minister to this Central and Southeast European country. The timing of International Yoga Day around the corner and the Prime Minister's visit to Croatia couldn't be more poetic. Zagreb is ready to welcome him.
As the sun rises over the Adriatic coast, the beaches of Croatia come alive, not just with tourists, but with yoga mats and chanting voices. Yoga practitioners in Zagreb are excited both for International Yoga Day and the visit of the Prime Minister Narendra Modi. Yoga has found deep roots in Croatia. Many certified yoga schools across the country offer training in asanas, pranayama and meditation. One of the yoga instructors in Zagreb, Swami Vivek Puri, said that more people are accepting yoga year by year after the introduction of International Yoga Day.
Hari Om, I am Mohammad Alesha Swami Vivek Puri. We are here in Croatia more than 42 years and I am practicing yoga more than 45 years. Yoga is very important, and I know through this 45 years what I am practicing yoga, big difference. In the beginning, people didn't know at all about yoga, but similar like in India. When I first time came to India, when I asked for the yoga shawl, the people was a little laughing. But after, when Ramdevji started with yoga with on the TV, very soon people know. Same way was also in the Croatia. We start that people didn't know about so much about yoga, maybe laughing, but slowly with our practicing, with our yoga class, thousands and thousands people of Croatia practicing yoga, and especially now after International Yoga Day.
Vivek Puri also said the visit of the Prime Minister will be important for bilateral relations as well as for awareness of yoga. Another yoga instructor in Zagreb, Barbara, nicknamed Bindu, sees yoga a tool of better health and a way of happy lifestyle.
My name is Bindu. I am yoga teacher. teacher here in Yoga India Life Center in Zagreb, Croatia. I see a great benefit that yoga brings to people because they are feeling physically more better, and also they connect more within the groups, different parts of town. So we are creating like a small communities where practitioners really come together and live a healthier and better life.
To celebrate the International Day of Yoga, the Embassy of India in Croatia is organizing a series of events throughout the country, offering free yoga sessions for public, strengthening ties between peoples of both countries. From Zagreb, Croatia, Sanjay Singh for Akashwani News.
To ye the ab tak ke kuch mukhya samachar. और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं सुभद्रा रामचंद्रन।
Thank you, Ravi. Starting with news from Chennai, the IIT Madras Pravartak Technologies Foundation is partnering with TCS ION to launch of a new online certification program in the fast-evolving field of machine learning operations. This comprehensive 110-hour online certification program will commence on 15 July this year, with enrollments currently open. The last day to register is 5th of July 2025. Dr. M. J. Shankar Raman, CEO of Pravartak, said that the course will provide pathways for a career in several job profiles, including data engineer, machine learning operations engineer, and machine learning automation engineer, among others. Getting to Bengaluru, the ban of bike taxi services in Karnataka causes a lot of difficulties to thousands of passengers of Bengaluru city who've been daily depending on it. Bike taxi services was banned with effect from yesterday, that's Monday, following a high court order upholding the state's decision. Karnataka government banned it since there is no provision for the bike taxi. The absence of a regulatory framework and the pressure from auto rickshaw drivers compelled to issue the ban order. A regulated inclusive policy could determine the future of bike taxis in Karnataka. Getting to Hyderabad now, the Anti-Corruption Bureau, ACB, of Telangana state has questioned Bharat Rashtra Samiti working president and former minister K.T. Rama Rao in the Formula E case for about 8 hours in Hyderabad yesterday. This is the second round of questioning in the case. Talking to media persons at party headquarters later, K.T.R. reiterated that he was not scared of arrest. Mr. Rao alleged that the ACB officials kept asking questions which they had not been given by the bosses in the government. He also said since Chief Minister Revanth Reddy was jailed once, he's trying to jail others just for vicious pleasure. Mr. Rao claimed that the Formula E race boosted the image of Telangana and alleged that the actions of the Revanth Reddy government were maligning the state. Ravi, over to you now for rest of the news.
जी हाँ सुभद्रा, धन्यवाद बहुत बहुत। और नजर डाल लेते हैं अब राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 23 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा ऐतिहासिक बन गई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी का ये महज एक दौरा नहीं है, बल्कि एक सशक्त संदेश है कि उनके नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से स्पष्ट हो गया है कि अब आर्थिक सहयोग, निवेश विस्तार और वैश्विक साझेदारी देश की विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज एक आत्मनिर्भर, विश्वसनीय और निर्णायक राष्ट्र के रूप में अपनी वैश्विक पहचान को और मजबूत कर रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल दिल्ली सचिवालय में कोरिया एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान हाइड्रोजन मोबिलिटी, स्मार्ट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, वायु गुणवत्ता सुधार और निगरानी जैसी संयुक्त परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य कोरिया के ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के ग्रीन एक्शन प्लान को समर्थन देने के लिए संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करना था। आगे बढ़ते हैं सुभद्रा, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। इंद्रायणी पुल ढहने से हुई मौतों को देखते हुए महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने कल सोमवार को मुंबई में समीक्षा बैठक की। मानसून के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुश्री सोनिक ने स्थानीय प्रशासन को पर्यटकों को संभावित खतरे की जानकारी देने और जानमाल की हानि को रोकने के लिए पर्याप्त साइन बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था होने तक पर्यटकों को ऐसे स्थानों पर जाने से रोका जाना चाहिए और किसी भी तरह के अतिक्रमण के मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हाल ही में मुंब्रा ट्रेन हादसे जैसी रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोमवार को समीक्षा बैठक भी हुई। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून इस सप्ताह पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आईएमजी के कोलकाता स्थित अलीपुर मौसम कार्यालय ने आकाशवाणी को बताया कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियां पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में मानसून के आगे बढ़ने में सहायक होंगी। इस बीच उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिस्थितियों और भारी नमी की मौजूदगी के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और सुभद्रा के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे तथा एक या दो बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुभद्रा।
यस रवि। Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 36 degrees Celsius, maximum will be around 27. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius, maximum will be around 21 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. Temperature will hover between a minimum of 32 degrees Celsius and a maximum of 23 degrees Celsius.
और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन सुभद्रा, उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस है, जो हर वर्ष आज ही के दिन यानी 17 जून को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य सूखे की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिवस भूमि के संरक्षण और पुनर्भरण की आवश्यकता पर जोर देता है।
Yes, of course, Ravi. This year's theme is geared towards taking action to restore land and fight climate impact. When there is a lack of rainfall, drought comes in and fertile land loses its flora and fauna, only a barren land remains. Other than climate change, there is human intervention like deforestation, improper irrigation, urbanization, land development, etc. So steps must be taken to bring back water through various methods like rainwater harvesting, plant trees to prevent deforestation and increase gain cover. And of course, Ravi, we in India hosted the UNCCD COP14 conference in the year 2019, in which many important global decisions were taken regarding this matter. This is the land restoration. Of course, we've set a target of restoring 26 million hectares of land by the year 2030, and we will achieve that too.
बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
यस, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड टुडे। 1885 दिस डे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अराइव्ड इन न्यूयॉर्क। It was sent by France as a symbol of friendship and the enduring values of liberty and democracy. 1936, this day, Edwin H. Armstrong demonstrated his invention of FM radio in Washington, D.C. to a fact-finding investigation by the Federal Communication Commission into the future of radio and TV. His method modulated the frequency of a broadcast radio wave to carry the audio signal, FM, instead of the existing amplitude modulation, that's AM radio. Compared the old and new methods with a series of recordings of the same program under different conditions. FM was clear of the hissing, buzzing and crackling static noises of AM. In 1944, this day, Iceland becomes a republic after declaring its independence from Denmark. In 1970, American scientist inventor Edwin Land patented the Polaroid camera.
1994 में आज के दिन उत्तरी कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने देश में बने रहने देने पर सहमत हुआ। 1999 में आज के दिन लेकेव जुमा दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए। 2001 में आज के दिन नेपाल शाही परिवार हत्या प्रकरण में डॉक्टर ने कहा कि दीपेंद्र के खून में शराब का अंश नहीं था। और 2003 में आज के दिन फ्रांस में 165 ईरानी आतंकवादी गिरफ्तार हुए। सन 2004 में आज ही के दिन मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले। सन 2008 में आज ही के दिन देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बंगलोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
And 2008 again, singer Katy Perry gives up gospel for pop when she releases her debut pop album, One of the Boys.
सन 2008 में ही आज के दिन रूस ने 2012 तक अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया और 2012 में आज के दिन साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनी थी। और सुभद्रा, अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो सबसे पहले हम पुण्यतिथियां ही लेंगे। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है शाहजी भोंसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई का, जिनका जन्म तो हुआ था 12 जनवरी 1598 को और निधन हुआ 17 जून 1674 को। इन्हें राजमाता जीजाबाई और साधारण रूप से जीजाई के नाम से जाना जाता था। अपने पति शाहजी भोंसले के द्वारा उपेक्षित कर दिए जाने पर भी वे अपने पुत्र शिवाजी की संरक्षिका बनी रहीं और उनके चरित्र, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों के निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया। शिवाजी के जीवन की दिशा निर्धारित करने में उनकी माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव था और जीजाबाई ने इतिहास में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक साबित हुए। जीजाबाई एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान महिला थी।
जयते चार क्षणाला दिली हाथी तलवार, जयते चार क्षणाला दिली हाथी तलवार, सुनिया कर्म कांडावर केले वज्राते प्रहार, सुनिया कर्म कांडावर केले वज्राते प्रहार।
1881, रिमेम्बरिंग जेम्स स्टाली, ब्रिटिश इन्वेंटर, मैन्युफैक्चरर, bicycle industry. Stali left family farm as a teenager and after initially working as a gardener, he turned to mechanical interests. James is often called the father of the bicycle industry for his work on early bicycles and tricycles, including the perfection of the chain drive and the invention of the differential gear. And today we remember Igor Stravinsky, Russian-born composer, whose compositions remained a touchstone of modernism for much of his long working life. He was honored with the Royal Philharmonic Society of Gold Medal in 1954. His fame rests on the few works, notably The Rite of Spring, wherein he presented a new concept of music involving constantly changing rhythms and metric imbalances, a brilliantly original orchestration. Right now, you are listening to Suite Number 1 for Small Orchestra.
और अब जिक्र मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 वाराणसी में और निधन हुआ 17 जून 1858 में। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है सुभद्रा, जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। यहां की ललनाएं भी इस कार्य में कभी पीछे नहीं रहीं। उन्हीं में से एक का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया। उनका जीवन स्वयं में विरोचित गुणों से भरपूर, अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वनिता थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में मणिकर्णिका नाम रखा गया, लेकिन प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था और विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ।
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकृति दानी दी, बूढ़े भारत में भी आई थी नई जवानी थी।
चमक उठी संतरा बन गई यह तलवार पुरानी थी,
Tributes to Brooklyn-born Barry Manilow, songwriter-singer who specialized in elaborately orchestrated romantic ballads, which won him a wide audience in the 70s. Manilow had sold more than 85 million records thanks to hits like Looks Like We Made It, Hook Copacabana, and I Write the Songs, and the one you're about to listen to, Mandy.
How happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. I'm standing on the edge of time. I walked away when love was mine.
In 1947, Seattle, Washington saw the birth of the legendary singer, keyboard player, Greg Rolie, who played with the Great Santana Band, later Journey, and currently he's with Ringo Starr and his All-Star Band. And friends, let's refresh that one big global smash, Black Magic Woman, for Greg Rolie, who sings lead here.
जयंतियों में अब बात करते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल के बारे में, जिनका जन्म हुआ 17 जून 1903 डिब्रूगढ़ असम में और निधन हुआ 17 जनवरी 1951 तेजपुर असम में। ज्योति प्रसाद अग्रवाल बहुआयामी और विलक्षण प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल का शुभ आगमन ऐसे समय में हुआ जब असमिया संस्कृति तथा सभ्यता अपने मूल रूप से विच्छिन्न होती जा रही थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज्योति प्रसाद अग्रवाल एक नाटककार, कथाकार, गीतकार, पत्र संपादक, संगीतकार और गायक सभी कुछ थे।
एंड फ्रेंड्स, टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। ऑफ कोर्स ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड डबल्स प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम एंड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डबल्स विन्स इन द डेविस कप। He has had 8 career Grand Slam doubles titles and 10 career Grand Slam mixed doubles championships. When Pace took the men's singles tennis bronze medal at the Atlanta 1996 Olympic Games, he became the first Indian athlete since 1952 to win an individual Olympic medal. In 2001, he was awarded the Padma Shri, later the Padma Bhushan, in 2014. And he was also inducted into the International Tennis Hall of Fame in 2024.
और अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता रहे निशिकांत कामंत के बारे में, जिनका जन्म हुआ 17 जून 1970 मुंबई, महाराष्ट्र में, और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 17 अगस्त 2020 को। उन्होंने दृश्यम, मुंबई मेरी जान और मदारी जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी पहली फिल्म डोमिवली फास्ट ने मराठी सिनेमा में बहुत प्रसिद्धि पाई, क्योंकि ये 2005 साल की सबसे बड़ी मराठी फिल्म थी। निशिकांत कामत ने तमिल में आर माधवन के साथ इवानो और वन के रूप में अपनी फिल्म की रीमेक भी बनाई थी। तो सुनते हैं उनकी इस एक फिल्म दृश्यम का ये गीत।
दुखता है दिल, दुखता है।
चलते चलते आज का विचार कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो समझो कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और सुभद्रा रामचंद्रन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।